मेक्सिको, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, पूरी दुनिया घूमने के बाद चलिए अब भारत भी आ ही जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली चलते हैं। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है भीकाजी कामा प्लेस। दिल्ली के रहने वालों के लिए हायत रेजेंसी होटल यहाँ का लैंडमार्क है मेरे ख्याल से। तो कभी आपका इस इलाके में जाना हुआ तो पूछेगा ज़रूर कि क्या लोग जानते हैं कि इस जगह का नाम किसके नाम पर पड़ा, कौन थी भीकाजी कामा। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आज आप सुनेंगे कहानी उस महिला की जिसने आज़ादी से 40 साल पहले भारत से बाहर जाकर दुनिया के सामने सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। आज की कहानी मैडम भीकाजी कामा की।
वो कौन थी?
अगस्त 1907, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के झंडे वहां फहराए गए। भारत पर तब अंग्रेजों का राज था, इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा ही लगा था। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में भीकाजी कामा भी पहुंची थी, अपने साथ एक ऐसा झंडा लेकर जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। हरे, पीले और लाल रंग के इस तिरंगे में ऊपर 8 कमल के फूल थे, नीचे चांद और सूरज, और बीच में लिखा था वंदे मातरम। आज हम भारत के झंडे को जिस रूप में जानते हैं ये उससे अलग था, लेकिन यही भारत के झंडे का पहला वर्जन था। इसी को बदल कर वो रूप मिला जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन भीकाजी कामा इस कॉन्फ्रेंस तक पहुंची कैसे और उन्होंने ये झंडा क्यों बनाया, ये समझने के लिए हमें जानना होगा भीकाजी कामा की जिंदगी को। 24 सितंबर 1861 को उस जमाने के बॉम्बे में जन्म हुआ भीकाजी पटेल का। इनके पिता सोराबजी फ्रामजी पटेल एक रईस पारसी व्यापारी थे। भीकाजी एक पढ़े लिखे, अमीर, इन्फ्लुएंशियल घर से नाता रखती थी। पढ़ाई उन्होंने की बॉम्बे के अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट से। 24 साल की उम्र में उनकी शादी हुई रुस्तम जी कामा से। ये भी बॉम्बे के प्रतिष्ठित परिवारों में से थे और एक जाने माने वकील थे। रुस्तम जी कामा अंग्रेजों के करीब थे, उनका उठना बैठना अंग्रेजों के साथ था, उन्हीं के जरिए वो राजनीति में भी उतरना चाहते थे। लेकिन रुस्तम जी अंग्रेजों की जितनी तारीफें करते, भीकाजी उनकी उतनी ही आलोचना करती। रुस्तम जी का मानना था कि अंग्रेजों ने भारत में बहुत कुछ अच्छा किया है, उन्हीं के कारण देश तरक्की कर रहा है, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, वगैरह वगैरह। जबकि भीकाजी इस सबसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती थी। उनका मानना था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, भारत के लोग जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करके नहीं जी सकते। दोनों की विचारधाराएं इतनी अलग थी कि इस शादी में प्यार कम ही दिखता था। भीकाजी पति के विचार नहीं बदल सकती थी और ना ही उन्हें अंग्रेजों के साथ काम करने से रोक सकती थी, पर साथ ही वो ये भी जानती थी कि पति के कहने पर वो भी खुद को बदलेंगी नहीं। जैसा कि अमीर परिवारों में अक्सर देखा जाता है, पति दौलत शोहरत कमाता है और पत्नी सोशल वर्क में लग जाती है। इस शादी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। भीकाजी जरूरतमंदों की मदद में लगी रहती थी। फिर 1896 में बॉम्बे में फैला प्लेग। 1890 के दशक में बॉम्बे तेजी से विस्तार कर रहा था। काम की तलाश में यहाँ जगह जगह लोग आ रहे थे। उस वक्त के आंकड़े दिखाते हैं कि शहर की 70% आबादी इमिग्रेंट्स की थी, जो बॉम्बे में आकर चौल में रहने लगे थे। ऐसे में अगर कोई बीमारी फैलती तो उसे रोकना बेहद मुश्किल था। 1896 में यही हुआ। ब्यूबोनिक प्लेग के चलते हजारों लोगों की जान गई। एक आंकड़े के अनुसार हर हफ्ते करीब 2000 लोग अपनी जान गंवा रहे थे। इस दौरान शहर के जेजे हॉस्पिटल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज में प्लेग को समझने के लिए रिसर्च लैब सेटअप की गई थी। भीकाजी कामा इस टीम को ज्वाइन कर लग गई लोगों की मदद करने में। आज कोरोना महामारी के दौरान जब कोई कोरोना मरीजों की देखभाल करने पहुंचता है तो मास्क होता है, पीपी किट होती है, उसके बाद भी इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं संक्रमण ना हो जाए। 100 साल पहले ये सब नहीं था। बिना किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के भीकाजी लोगों की सेवा में लगी हुई थी और आखिरकार उन्हें भी प्लेग हो ही गया। भीकाजी लंबे वक्त तक बीमार रही। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि घर वालों ने इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजने का फैसला किया। साल 1902 में भीकाजी कामा लंदन पहुंची। जो बात भीकाजी उस वक्त नहीं जानती थी वो ये थी कि लंदन वो जा तो सिर्फ इलाज कराने के लिए रही हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी सारी जिंदगी भारत से दूर रहकर ही बितानी थी। लॉजिकली सोचने पर ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसे इंसान को उसके देश से दूर कर दिया जाए जिसके लिए देशभक्ति ही सबसे जरूरी हो, तो वो दूसरे देश जाकर करेगा क्या? अपने देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना? लेकिन भिकाजी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने देश से बाहर रहने को भी देश हित में एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया। लंदन में भिकाजी की मुलाकात हुई श्यामजी वर्मा और दादा भाई नौरोजी से। नौरोजी लंदन इंडियन सोसाइटी के भी अध्यक्ष थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी। साथ ही वो पहले ऐसे भारतीय थे जो चुनाव जीतकर ब्रिटेन की संसद में पहुंचे थे। भिकाजी ने नौरोजी की सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हीं के कारण वो ऐसे लोगों के संपर्क में आईं जो भारत को आजादी दिलाने की दिशा में काम कर रहे थे। भारत में रहते हुए भिकाजी के लिए अपने जैसी सोच वालों के साथ उठना बैठना मुश्किल था, लेकिन लंदन आकर उनकी जिंदगी में ये एक बड़ा बदलाव आया। इसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और वो खुलकर अपने विचार व्यक्त करने लगी। लंदन के मशहूर हाइड पार्क में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खूब भाषण दिए। कुछ सालों बाद जब भिकाजी ने भारत वापस जाना चाहा, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अर्जी भेजी। अंग्रेजी हुकूमत जानती थी कि अगर भिकाजी को भारत जाने दिया तो वो वहां जाकर लोगों में अपने क्रांतिकारी विचार फैलाने की कोशिश करेंगी। इसलिए उनके सामने ये शर्त रखी गई कि भारत जाने की इजाजत तभी मिलेगी अगर वो साइन करके देती हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। जाहिर है भिकाजी को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उन्होंने इनकार कर दिया और देश की खातिर परिवार से दूर ही रहती रही। 21 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस नाम का एक सम्मेलन हुआ। सातवीं बार ये सम्मेलन हो रहा था, जिसमें 25 देशों की सोशलिस्ट पार्टीज ने शिरकत की। दुनिया भर से करीब 900 लोग इसमें हिस्सा लेने पहुंचे और इसमें भारत के भी दो खास चेहरे थे, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भिकाजी कामा। पूरे डेलीगेशन के सामने भिकाजी एक झंडा हाथ में लिए स्टेज पर पहुंच गई और उन्होंने कहा, ये आजाद भारत का झंडा है, मैं आप सब सज्जनों से विनती करती हूं कि खड़े हों और इसे सलाम करें। कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार के लोग भी शामिल थे और उनके लिए ये बहुत ही चौंका देने वाला पल था। भिकाजी को इस बात का डर नहीं था कि उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने लोगों को खड़े होने को कहा, पूरा हॉल वाकई खड़ा हुआ और पहली बार भारत के झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि सूखे और प्लेग के कारण भारत में क्या हालात हैं, कैसे अंग्रेजों के राज में गरीब वहां मरने पर मजबूर हैं। ऐसा करके भिकाजी कामा ने पूरी दुनिया के आगे साफ कर दिया था कि भारत आजाद होना चाहता है, भारत अंग्रेजों के चंगुल से निकलना चाहता है। हालांकि इस वाकये के बाद भी आजादी मिलते मिलते 40 साल और लगे, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भिकाजी कामा के इस साहसी कदम से बहुत लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मिली थी। ब्रिटिश सरकार अब भिकाजी पर और भी ज्यादा नजर रखने लगी थी। ब्रिटेन में रहकर भारत की आजादी के लिए लिखना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए 1909 में वो लंदन से भागकर पेरिस रहने चली गई। उस जमाने में दुनिया भर के क्रांतिकारी पेरिस में जमा थे और भारतीय क्रांतिकारी अब एक दूसरे से मिलने के लिए भिकाजी कामा के घर का इस्तेमाल करने लगे थे। यहाँ मुचेरशा बुरोरजी गोदरेज के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की शुरुआत की। अब वो रुकने वाली नहीं थी, उनके लेख यूरोप के कई शहरों में छपा करते थे। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत की। इसका नाम था वंदे मातरम और इसे वो पौंडिचेरी के रास्ते भारत भिजवाती थी। ब्रिटिश सरकार ने भिकाजी कामा के लेखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन पौंडिचेरी में फ्रांस की हुकूमत थी, तो किसी तरह उस रास्ते वो अपनी मैगजीन भिजवाने में कामयाब रहती। साथ ही वो फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य भी बन गई थी। इस तरह से उन्होंने कई ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट बना लिए थे जो भारत में उनके साथियों को सुरक्षा दिला सकें। ब्रिटिश सरकार को भी ये खेल समझ में आने लगा था, इसलिए 1910 में उन्होंने फ्रांस से कहा कि भिकाजी को वापस ब्रिटेन भेज दिया जाए, लेकिन फ्रेंच सरकार ने इसे खारिज कर दिया। पेरिस में रहकर भिकाजी लिखती रहीं। उनकी दोस्ती सावरकर से भी थी और लेनिन से भी। सब ठीक ही चल रहा था कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब फ्रांस ब्रिटेन के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था। ऐसे में भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों के लिए फ्रांस छोड़ना जरूरी हो गया था। भिकाजी कामा और सिंह रेवा भाई राणा के अलावा पेरिस इंडिया सोसाइटी के सभी सदस्य फ्रांस छोड़कर चले गए। भिकाजी को भी कहा गया था कि वो स्पेन चली जाएं, वहां वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन वो नहीं मानी। फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें राजनीतिक कैदी बनाकर विशी नाम के शहर में भेज दिया। यहां वो करीब 3 साल रहीं। इसके बाद उन्हें बॉर्डो नाम के शहर जाने की अनुमति मिली, लेकिन इस शर्त पर कि वो हर हफ्ते थाने जाकर हाजिरी लगाएंगी। 1918 में आखिरकार जंग खत्म हुई और भिकाजी अपने पेरिस वाले घर लौट सकी, लेकिन यूरोप से उनका नाता 1935 तक नहीं छूटा। इस बीच वो देश से दूर रहकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती रहीं। भिकाजी कामा न केवल अंग्रेजों के खिलाफ बोलती थी बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाती थी। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब वो 1910 में मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि यहां तो सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं। तो अपनी स्पीच की शुरुआत उन्होंने इस सवाल से की, बाकी का आधा मिस्र कहां है? मुझे तो सिर्फ आदमी नजर आ रहे हैं जो देश के सिर्फ आधे हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। माएं बहने कहां हैं? आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हाथ पालने को झुलाते हैं वही हाथ लोगों को बनाते भी हैं। आजादी की लड़ाई में औरतों की भूमिका पर भिकाजी ने हमेशा जोर दिया। वो कहती थी कि भारत जब आजाद होगा तो भारत की महिलाओं के पास भी सब हक होंगे। हालांकि भारत को आजाद होते हुए वो देख नहीं पाई। 1935 में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। स्ट्रोक पड़ने के कारण उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था। उन्होंने फिर अंग्रेजी हुकूमत से गुजारिश की कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। अंग्रेजी हुकूमत ने एक बार फिर वही शर्त रख दी कि जाओ, लेकिन मुंह पर ताला लगाकर। भिकाजी की उम्र तब 74 साल थी। वो 33 साल से भारत से दूर रह चुकी थी। अब उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो जानती थी कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए इस बार उन्होंने शर्त मान ली। वो जीने के लिए नहीं, मरने के लिए भारत लौटना चाहती थी। भिकाजी लौटी और 9 महीने बाद पारसी जनरल हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। यूनिवर्सिटीज के, हॉस्पिटल्स के, सड़कों के नाम अक्सर किसी न किसी शख्सियत के नाम पर रखे जाते हैं, लेकिन कितनी बार हम खुद से ये सवाल करते हैं कि ये शख्स था कौन, इसकी कहानी क्या थी। हाँ, जब सड़कों के नाम बदले जाते हैं तब जरूर वो सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन तब भी वो राजनीति का ही शिकार होकर रह जाते हैं। वो शख्स किस धर्म का था, किस जाति का था, किस पॉलिटिकल पार्टी का था, अफसोस की बहस यहीं तक ही सीमित होकर रह जाती है। तो अगली बार आप जब ऐसी किसी सड़क से गुजरें तो किसी से पूछेगा जरूर कि इस शख्स की कहानी क्या थी। वैसे भिकाजी कामा ने जो झंडा बनाया वो आज भी पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में मौजूद है। कभी जाएं तो देखिएगा जरूर।